एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं लीला मॉटली के पहले उपन्यास नाइट क्रॉलिंग की, एक ऐसी किताब जिसने आते ही साहित्यिक जगत में काफी हलचल मचा दी।
हाँ बिल्कुल, इसकी चर्चा बहुत हुई, बुक प्राइज के लिए लॉन्गलिस्ट हुई,
ओपरा विनफ्रे के बुक क्लब में भी शामिल हुए।
और खास बात यह भी है, जैसे आप कह रही थी कि लेखिका लीला मॉटली ने इसे लिखना तब शुरू किया जब वो महज 17 साल की थी।
17 साल, सोचिए जरा।
हाँ, ओकलैंड कैलिफोर्निया की रहने वाली और पहले यूथ पोएट लॉरेट भी रह चुकी हैं, तो मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी भाषा में खास तरह की काव्यात्मकता होगी, एक धार होगी।
बिल्कुल, उनकी पोएट्री वाली पृष्ठभूमि उनके गद्य में साफ झलकती है। आज हम इसी उपन्यास की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे, है ना?
हाँ, देखते हैं कि कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं।
पंजीमी आर्य के समाज के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये महज कहानी नहीं बल्कि अमेरिकी शहरी जिंदगी, खासकर हाशिए पर रहने वाले लोगों के संघर्ष का एक तरह से आईना है।
और कहानी का माहौल भी समझना जरूरी, मुझे लगता है ये ओकलैंड कैलिफोर्निया में सेट है और ये पूरी तरह काल्पनिक होते हुए भी असल में 2015 के एक असली सेक्स स्कैंडल से प्रेरित है।
हाँ, वो पुलिस वाला स्कैंडल।
हाँ, जिसमें ओकलैंड पुलिस डिपार्टमेंट के कई अफसर शामिल थे। ये बात कहानी को और भी ज्यादा वजनदार बना देती है।
हाँ, ये संदर्भ जानना जरूरी है। ओकलैंड खाड़ी क्षेत्र यानी बे एरिया का हिस्सा है, जहाँ जेंट्रिफिकेशन मतलब वो जो होता है ना कि शहर बदला और अमीर लोग आकर बस गए।
और गरीब बेचारे उजड़ गए।
बिल्कुल, वो फिर पुलिस की हिंसा और जबरदस्त आर्थिक असमानता, खासकर अश्वेत समुदाय के लिए, ये सब रोजमर्रा की सच्चाई है। मॉटली इसी माहौल में तली बढ़ी हैं और वो उन आवाजों को सामने लाती हैं जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है।
सही बात है, तो चलिए कहानी में चलते हैं। कहानी हमें मिलती है 17 साल की कियारा जॉनसन से।
17 साल की कियारा?
हाँ, उसके दरवाजे पर घर खाली करने का नोटिस लगा है। पिता गुजर चुके हैं, माँ जेल में हैं और ये अपार्टमेंट ही उनके पास मतलब विरासत में बची एक चीज थी।
अकेली है वो?
नहीं, कियारा अकेली नहीं है, उसका बड़ा भाई मार्कस भी है।
अच्छा, भाई भी है।
लेकिन मार्कस अपने रैपर बनने के सपनों में खोया रहता है, जिम्मेदारियों से भागता है।
हाँ, वो थोड़ा गैर जिम्मेदार किस्म का है।
तो घर चलाने का, किराया देने का, और तो और पड़ोस की एक नशे की आधी औरत है, उसके 9 साल के बेटे ट्रेवर की देखभाल का बोझ भी
वो भी कियारा पर ही है।
हाँ, कियारा पर ही आ पड़ता है। सोचिए 17 साल की लड़की पर ये सब। फ्रिज खाली है, पैसे हैं नहीं, एक भयानक मतलब दबाव है।
बिल्कुल।
और कियारा का किरदार बड़ा दिलचस्प है। वो वफादार है, जिम्मेदार बनने की कोशिश कर रही है, खासकर अपने भाई मार्कस और छोटे ट्रेवर के लिए। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। वो चीजों को बहुत बारीकी से देखती है। उसके मन में एक तरह की कविता चलती रहती है जो उसकी बेरहम बाहरी सच्चाई से एकदम उलट है।
और यहीं से उपन्यास का असल मर्म, मुझे लगता है, पकड़ में आता है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो नामुमकिन हालातों में बस जीने की कोशिश कर रही है। और फिर वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जिसे वो नाइट क्रॉलिंग कहती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये उसका चुनाव था या ये उस विकल्पहीनता का नतीजा था जहां सिस्टम ने एक तरह से उसे धकेल दिया।
सही सवाल है, क्योंकि कियारा नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कहीं बात नहीं बनती। फिर एक रात हताशा और जरूरत के मारे वो सड़क पर होती है और उसे गलती से कोई सेक्स वर्कर समझ लेता है। और उस पल जरूरत इतनी बड़ी होती है कि वो उसी रास्ते पर चल पड़ती है। ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं है बल्कि एक हादसा है, एक डरावना और तकलीफदेह पल।
तो नाइट क्रॉलिंग यानी रात में सड़कों पर ग्राहक ढूंढना उसका किराया चुकाने का उसका जरिया बन जाता है, मजबूरी में।
हाँ बिल्कुल, मजबूरी में।
और ये रास्ता उसे कहाँ ले जाता है, वो तो कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। लेकिन उससे पहले मार्कस और ट्रेवर के बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है ना?
हाँ, मार्कस को मतलब विलेन कहना शायद ठीक ना हो, वो खुद हालात कमा रहा है, सपनों के पीछे भाग रहा है।
लेकिन उसकी गैर जिम्मेदारी कियारा के लिए कितनी भारी पड़ती है। उसका वो संगीत का सपना उसे जैसे अंधा बना देता है अपनी जिम्मेदारियों के प्रति।
हाँ, वो एक दुखद किरदार है असल में। और दूसरी तरफ है ट्रेवर, वो 9 साल का बच्चा।
हाँ, ट्रेवर
कियारा के लिए वो जैसे मासूमियत का प्रतीक है जिसे वो इस कठोर दुनिया से बचाने की कोशिश कर रही है।
वो एक उम्मीद की तरह है।
हाँ, वो कियारा की जिंदगी में बिना शर्त वाले प्यार और एक मकसद की तरह है। उसकी मौजूदगी याद दिलाती है कि दांव पर क्या लगा है इन बच्चों का भविष्य।
मैं रखना चाहती है, पर कहानी का अंधेरा और गहरा होता जाता है।
हाँ, बहुत। एक रात कियारा पुलिस की गाड़ी में फंस जाती है।
पुलिस की गाड़ी में?
हाँ, और गिरफ्तारी के बजाय उसे पुलिस ऑफिसर यौन शोषण के लिए मजबूर करता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता।
नहीं? ओह
नहीं, ये एक भयानक सिलसिला बन जाता है। भ्रष्ट पुलिस अफसरों का एक पूरा गैंग एक तरह से उसका शोषण करने लगता है।
पूरा गैंग?
हाँ, वो पूरी तरह उनके चंगुल में फंस जाती है। डर इतना कि अगर मुंह खोला तो जेल या शायद उससे भी बुरा कुछ होगा।
तो वो एक दोहरी जिंदगी जीने लगती होगी।
बिल्कुल। मार्कस से पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये छुपाना पड़ता है। ट्रेवर के सामने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करनी पड़ती है। बहुत मुश्किल।
यहीं पर व्यवस्थागत भ्रष्टाचार यानी सिस्टेमिक करप्शन का वो असली चेहरा सामने आता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
हाँ, सही।
ये अफसर अपनी वर्दी और ताकत का इस्तेमाल सबसे कमजोर लोगों का शिकार करने के लिए करते हैं। इनमें नस्लवाद, स्त्री द्वेष यानी मिसोजिनी और वर्ग भेद यानी क्लासिज्म सब कुछ झलकता है।
उन्हें लगता है कि कियारा जैसी लड़कियों की कोई सुनने वाला नहीं, उनका क्या बिगड़ेगा।
उफ,
मोटली का लेखन या कमाल का है सच में। वो कियारा के डर, उसकी बेबसी, उस घुटन को इतने करीब से दिखाती हैं कि पढ़ने वाले को एहसास होता है।
हाँ, आप महसूस कर सकते हैं।
ऐसा लगता है जैसे हम भी उसी गाड़ी में कैद हैं। ये दिखाता है कि कैसे संस्थागत ताकत का गलत इस्तेमाल किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है।
और फिर कहानी में एक मोड़ आता है ना, कुछ बदलता है।
हाँ, एक मोड़ आता है। पुलिस के साथ कियारा की एक मुठभेड़ का नतीजा ये होता है कि एक दूसरी सेक्स वर्कर की मौत हो जाती है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से।
ओ, अच्छा।
इस घटना से बाहरी जांचकर्ताओं का ध्यान इस मामले पर जाता है
तो पर्दा उठना शुरू होता है।
बिल्कुल। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार का जाल खुलने लगता है। जांचकर्ता 11 तक पहुंचते हैं,
उसे ढूंढ लेते हैं।
हाँ, और उसे अचानक एक पहचान मिलती है, जेन डो, एक गुमनाम नाम।
जेन डो?
हाँ, जो उसे एक बड़े स्कैंडल के बीचों बीच खड़ा कर देता है। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक केस की एक गवाह है।
तो अब उसके सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव है कि चुप रहकर डर में जीना जारी रखे या सामने आए और गवाही दे।
हाँ, और गवाही देने का मतलब है पब्लिक में आना, सवालों के घेरे में खड़ा होना, लांछन सहना
और पुलिस डिपार्टमेंट के गुस्से का सामना करना। ये कोई आसान फैसला नहीं।
बिल्कुल नहीं।
यही हम कियारा का विकास देखते हैं शायद।
हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कोई हीरो बनने का सफर नहीं है, ये समझना जरूरी है।
नहीं, वैसा नहीं है।
ये एक ढायल घावना से गुजरी लड़की का अपनी आवाज ढूंढने का मुश्किल सफर है। वो अपनी सच्चाई कहना सीख रही है ऐसी दुनिया में जो उसकी कहानी को अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना चाहती है। उपन्यास में एक जगह ऐसा महसूस होता है जैसे वो कह रही हो, मेरा शरीर एक कहानी है जिसे मैंने नहीं लिखा, जिसे दूसरों ने मेरी अनुमति के बिना खुरेद दिया।
उफ, बहुत शक्तिशाली बात है ये। और यहीं पर वो आवाज की शक्ति और खतरे वाली बात आती है ना।
बिल्कुल। पावर एंड पेरल ऑफ वॉइस। आवाज मिलना एक ताकत है, लेकिन वो ताकत खतरनाक भी हो सकती है, खासकर जब आप एक शक्तिशाली सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हो।
तो वो क्या करती है?
बहुत हिचक और डर के साथ कियारा गवाही देने के लिए राजी हो जाती है।
हिम्मत करती है।
हाँ, उपन्यास का आखिरी हिस्सा इसी थका देने वाली और अक्सर क्रूर कानूनी प्रक्रिया पर फोकस करता है। और ये न्याय व्यवस्था पर भी एक तीखी टिप्पणी है जो अक्सर पीड़ितों को ही दोबारा चोट पहुंचाती है।
कैसे, मतलब किस तरह से?
कियारा से बेहद अपमानजनक निजी सवाल पूछे जाते हैं, उसकी बातों पर शक किया जाता है।
कैरेक्टर असैसिनेशन।
हाँ, बिल्कुल। वकील उसे एक मजबूर पीड़ित बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं जो इसमें अपनी मर्जी से शामिल थी। ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे सच बोलना, जैसा उपन्यास में कहीं कहा गया है, कांच निगलने जैसा है, जरूरी लेकिन अंदर तक काटता हुआ।
और अंत क्या होता है? क्या उसे न्याय मिलता है?
देखिए, उपन्यास बड़ी चालाकी से किसी आसान,
हाँ, कोई फिल्मी अंत नहीं।
बिल्कुल, कोई फिल्मी जीत वाले अंत से बचता है। पूरा ध्यान कियारा के अंदरूनी अनुभव पर रहता है कि वो अपनी कहानी अपनी शर्तों पर कैसे कहे, उसे सबूत का एक टुकड़ा न समझकर एक इंसान की तरह कैसे देखा जाए।
तो क्या होता है आखिर में?
अंत में कोई साफ सुथरा समाधान नहीं है। न्याय अधूरा सा लगता है, जख्म बने रहते हैं, लेकिन बोलकर, उस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर कियारा किसी तरह अपने वजूद को, अपनी पहचान को एक तरह से वापस पाती है। उसने अपनी आवाज पाई है, भले ही उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी हो।
ये कहानी वाकई कई परतों में खुलती है। हमने व्यवस्थागत भ्रष्टाचार की बात की, मासूमियत कैसे बेरहमी से छीन ली जाती है इसकी बात की, लेकिन इसमें उत्तरजीविता और जिजीविषा मतलब सर्वाइवल एंड रेजिलियंस का पहलू भी बहुत मजबूत है।
हाँ, बहुत।
कियारा की ताकत कोई ग्लैमरस हीरो वाली नहीं है, वो असली है, जरूरत से पैदा हुई है। जैसा उपन्यास में कहीं महसूस होता है, हम लचीला होना चुनते नहीं हैं, हम बस होते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता।
बिल्कुल, और ये इसकी खामोश सहन शक्ति है जो याद रह जाती है। एक और अहम बात है परिवार और समुदाय की भूमिका, या कहें कि उनकी गैर मौजूदगी।
हाँ, एब्सेंस।
कियारा और मार्कस में प्यार है, पर वो मार्कस की गैर जिम्मेदारियों से टूटा हुआ है। ट्रेवर के साथ उसका रिश्ता दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कैसे अनजाने रिश्ते बन जाते हैं, फाउंड फैमिली जिसे कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक सुरक्षा जाल का न होना, कोई सामाजिक सहारा नहीं, कोई समुदाय नहीं जो उसे संभाल सके। इसी वजह से वो इतनी अकेली और असुरक्षित महसूस करती है।
और यहीं पे नस्ल, लिंग और वर्ग का वो इंटरसेक्शन, उनका प्रतिच्छेदन साफ नजर आता है ना?
बिल्कुल, कियारा की पहचान एक जवान, गरीब, अश्वेत लड़की, यही उसे शोषण का आसान निशाना बनाती है।
उपन्यास ये सवाल उठाता है कि क्या अगर उसकी पहचान अलग होती तो उसके साथ ऐसा होता? सिस्टम उसे तब तक नजरअंदाज करता है जब तक वो उसके किसी काम ना आ सके, चाहे वो शोषण के लिए हो या फिर एक केस के लिए।
हाँ, उपन्यास में एक जगह पुलिस वालों के बारे में एक लाइन है जो बहुत कुछ कहती है, कि वे अपने बैज ऐसे पहनते थे जैसे वे अपनी त्वचा पहनते हैं, स्वाभाविक रूप से, बिना ये सोचे कि दूसरों के लिए इसका क्या मतलब है।
वाह, ये दिखाता है कि कैसे ताकत का एहसास उसे रखने वालों को अंधा बना देता है।
बिल्कुल, और कियारा की खामोशी के बारे में भी, कभी कभी सबसे शांत लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा शोर होता है।
लेखिका की शैली पर भी बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत है कथात्मक दृष्टिकोण, वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव।
हाँ, पूरी कहानी कियारा की आवाज में कही गई है।
इससे पढ़ने वाला सीधे उसके जूतों में खड़ा हो जाता है। हम उसकी दुनिया को उसकी आंखों से देखते हैं, उसके डर को महसूस करते हैं। ये हमें सिर्फ एक बाहरी दर्शक नहीं रहने देता, बल्कि कहानी के अंदर खींच लेता है।
सही कहा।
उसकी इंसानियत कभी खोने नहीं पाती, तब भी जब दुनिया उसे अमानवीय बनाने पर तुली हो।
और भाषा, लीला मोटली की वो काव्यमय भाषा।
हाँ, कमाल की है। कहानी इतनी कठोर और बेरहम है, लेकिन भाषा उतनी ही सुंदर और गीतात्मक। ये कॉन्ट्रास्ट अजीब सा सुकून भी देता है और तकलीफ को और गहरा भी करता है।
वो ओकलैंड शहर को जिंदा कर देती हैं। वो लिखती हैं, डैमर और लेवेंडर की गंध, फ्रीवे की खामोशी, ये सिर्फ सामाजिक टिप्पणी नहीं रह जाती, ये ऊंचे दर्जे का साहित्य बन जाता है। माहौल खिरखिरा भी है और कहीं कहीं सपने जैसा भी।
इसमें प्रतीकात्मकता का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है, जैसे वो खाली स्विमिंग पूल कियारा के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, वो बार बार आता है कहानी में।
हाँ, वो पूल,
वो खोए हुए बचपन, छूटी हुई खुशियों, एक सामुदायिक जीवन की संभावना का प्रतीक है जो अब बस एक कंक्रीट का गड्ढा बनकर रह गया है।
और नाचना, डांसिंग, कियारा के लिए ये खुद से जुड़ने का, अपने शरीर पर अपना हक महसूस करने का एक दुर्लभ तरीका है।
हाँ, एक पलायन का जरिया।
उन कुछ पलों में वो सिर्फ कियारा होती है, किसी की जरूरत या शिकार नहीं। और शीर्षक खुद, नाइट क्रॉलिंग, ये सिर्फ रात में सड़कों पर घूमने का मतलब नहीं है, ये अंधेरे में जीने का प्रतीक है, अनदेखा, अनसुना, शिकारियों के रहमो करम पर।
उपन्यास रूपकों से भी भरा पड़ा है,
मेटाफर्स,
जैसे ये सोचना कि गरीबी समय और सम्मान दोनों की चोर है,
या प्यार एक अलग तरह की भूख थी जिसे भोजन संतुष्ट नहीं कर सकता था। ये छोटी छोटी बातें कहानी को और गहराई देती हैं।
उपन्यास की बनावट भी, जैसे आपने कहा, कभी कभी टूटी फूटी सी लगती है।
हाँ, खंडित सी, जो शायद कियारा के टूटे हुए मन और बिखरी हुई यादों को दर्शाती है।
इसे पढ़ना आसान नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा।
बिल्कुल नहीं, ये एक भारी, विचलित करने वाला अनुभव है, लेकिन ऐसा जो भुलाया ना जा सके। यह आप में उदासी भरता है, गुस्सा दिलाता है और कियारा के लिए गहरी हमदर्दी पैदा करता है। मोटली कुछ भी छिपाती नहीं है, वो यौन शोषण की सच्चाई को बिना लाग लपेट के सामने रखती हैं। ये पाठक को मजबूर करता है कि वो उस दर्द का गवाह बने।
मेरे ख्याल से इस उपन्यास का सबसे स्थायी प्रभाव कियारा की आवाज है, सच्ची, काव्यात्मक और दिल दहला देने वाली ईमानदारी।
हाँ,
ये किताब हमें उन सच्चाइयों का सामना करने की चुनौती देती है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करना चाहते हैं। पुलिस का भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था की नाकामी
और समाज की उदासीनता, खासकर गरीब अश्वेत लड़कियों के प्रति।
हाँ, ये बहस को अखबार की सुर्खियों और आंकड़ों से हटाकर एक जीती जागती इंसान के अनुभव पर ले आती है।
सही कहा। किताब खत्म करने के बाद भी कियारा की वो खामोश ताकत, उसकी सहन शक्ति याद रह जाती है। और ये सवाल भी कि असली न्याय क्या है, क्या सिर्फ सजा देना काफी है?
उस लड़की के लिए ठीक होने का मतलब क्या है जिसका बचपन छीन लिया गया?
बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिन व्यवस्थाओं में हम रहते हैं कहीं उनमें हमारी भी कोई मिलीभगत तो नहीं। ये पुलिस जवाबदेही, सर्वाइवल सेक्स वर्क, गरीबी जैसे मुद्दों पर हमारा नजरिया बदलने की क्षमता रखती है।
संक्षेप में कहें तो ये उपन्यास व्यवस्थागत क्रूरता के बीच मानवीय गरिमा और लचीलेपन का एक शक्तिशाली और कहना होगा साहसी चित्रण है।
और ये हमें याद दिलाता है कि अपनी कहानी को पुनः प्राप्त करने के लिए कितनी शांत शक्ति की आवश्यकता होती है, खासकर तब जब दुनिया सुनना नहीं चाहती।
फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।